नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ हुई एक बातचीत की और उससे कुछ काफी दिलचस्प बातें निकली हैं। मुद्दा यह है कि हमारा डेटा कैसे इकट्ठा हो रहा है, इसकी असली कीमत क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल हमें शायद अनजाने में ही कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। सोचिए ना, फेसबुक है या दूसरी जो फ्री एप्स हम इस्तेमाल करते हैं, लोकेशन क्या सोचते हैं, पॉलिटिक्स पे, धर्म क्या है, यहां तक कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी, ये सब जानकारी वो ले रही हैं।
हाँ, तो इसको थोड़ा और समझते हैं, क्या है ये मामला।
जी बिल्कुल, और अमित दुबे इसी बात पर जोर देते हैं कि हम सिर्फ यूजर नहीं हैं इन एप्स के, हम असल में उस डेटा के प्रोडक्ट हैं जो हमें एक तरह से जन्म से मिला है। हमारी इच्छाएं हैं, कमजोरियां हैं, सपने हैं, ये एप्स हमारी इसी साइकोलॉजी को समझ रही हैं डेटा के जरिए, और ये जो समझ है ये अब कुछ ही कंपनियों के हाथ में सिमट गई है। तो क्या ये सब सिर्फ बेहतर विज्ञापन दिखाने के लिए हो रहा है जैसा आमतौर पर लगता है, या फिर दुबे का इशारा किसी गहरे कंट्रोल की तरफ था? आपने कहा साइकोलॉजी समझ रहे हैं।
हाँ देखिए, बात सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं है, शायद उससे कहीं ज्यादा गहरी है। दुबे के अनुसार असल मकसद हो सकता है हमारी पसंद नापसंद को धीरे धीरे बदलना, उसको ढालना।
ढालना कैसे?
मतलब हम क्या देखेंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ खाएंगे। उनका तर्क है कि अगर आपकी साइकोलॉजी की पूरी यूजर मैनुअल, समझ लीजिए, किसी के पास हो तो वो आपको लगभग किसी भी चीज के लिए तैयार कर सकते हैं। इसको अगर और आगे सोचें तो शायद ये भी प्रभावित किया जा सके कि किसी देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा।
अरे बाप रे।
हाँ, सुनने में शायद ये बहुत बड़ा लगे, पर टेक्नोलॉजी ये पावर दे रही है। ये हमारी जिंदगी की चाबी दूसरों को देने जैसा है धीरे धीरे।
वाकई, और यहीं पर वो डेटा की कीमत वाली बात आती है कि जब तक हमें इसकी असली वैल्यू समझ नहीं आएगी हम इसे ऐसे ही देते रहेंगे। वो सोना और चावल वाला उदाहरण सही था।
बिल्कुल वही, सोने की हम कितनी हिफाजत करते हैं, तिजोरी में रखते हैं, क्यों? क्योंकि कीमत पता है, चावल शायद बोरी में पड़ा रहे। लेकिन टिकटॉक या वीचैट जैसी कंपनियां, इनकी जो अरबों डॉलर की वैल्यूएशन है वो कहां से आ रही है?
हमारे इसी डेटा से।
बिल्कुल, हमारे ही डेटा से। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े स्केल पे देखें, जियोपॉलिटिक्स में, तो डेटा आज एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है।
हाँ, कैसे?
सोचिए, ज्यादातर बड़ी टेक कंपनियां कहाँ की हैं? अमेरिकी।
हाँ, सही है।
तो अमेरिका के पास दुनिया का बहुत सारा डेटा है और ये उन्हें एक जबरदस्त बढ़त देता है इकोनॉमिक भी और इंटेलिजेंस के लिहाज से भी। और दूसरी तरफ है चीन, जो अपना डेटा किसी को नहीं देता, बिल्कुल नहीं, लेकिन चाइनीज एप्स के जरिए दुनिया भर से डेटा इकट्ठा कर रहा है। वो ये गेम समझता है।
तो मतलब भविष्य में देशों के बीच जो तनातनी होगी या कंपटीशन होगा वो डेटा को लेकर हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। एक तरफ अमेरिका जिसके पास सबका डेटा है, दूसरी तरफ चीन जिसका डेटा किसी के पास नहीं।
लेकिन ये डेटा का खेल सिर्फ सरकारों के बीच नहीं है ना। अभी वो हिजबुल्ला पेजर ब्लास्ट वाला किस्सा हुआ, उन्होंने तो सोचा था पेजर ज्यादा सेफ है, स्मार्टफोन से तो बेहतर ही होंगे।
हाँ, क्योंकि उसमें वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता ना। लगा होगा कि हैक करना मुश्किल है, लेकिन वो हमला दिखाता है कि खतरा सिर्फ सॉफ्टवेयर का नहीं होता। दुबे बताते हैं कि वो एक मल्टी लेयर्ड अटैक था, उसमें हार्डवेयर से छेड़छाड़ हुई।
हार्डवेयर से मतलब डिवाइस के अंदर?
हाँ, बैटरी में विस्फोटक फिट किया गया था ऐसा कहा जा रहा है, फिर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ उन्हें एक साथ ट्रिगर करने के लिए, और यहाँ तक कि पूरी सप्लाई चेन, मतलब वो पेजर उन तक पहुंचे कैसे, उस पूरे रास्ते को कॉम्प्रोमाइज किया गया था।
बाप रे, ये तो बहुत सोची समझी साजिश लगती है।
बिल्कुल, ये कोई अचानक नहीं हुआ, सालों की प्लानिंग लगती है इसके पीछे। और इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है कि अगर ये उनके साथ हो सकता है तो क्या ये किसी के भी साथ नहीं हो सकता, किसी भी डिवाइस पर?
और ये खतरा सिर्फ दूर देश या बड़े संगठनों तक नहीं है, ये तो हमारे घरों तक आ गया है, वो जो सस्ते वाईफाई कैमरे लगाते हैं लोग।
हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं। इन सस्ते कैमरों का डेटा अक्सर कहाँ जा रहा है, विदेशों में सर्वर पर, ज्यादातर चीनी सर्वर होते हैं, और कोई क्लियर पेमेंट मॉडल भी नहीं होता। और सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, लोग डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं बदलते।
वो एडमिन या 12345 जैसा कुछ।
बिल्कुल, और शॉडॉन जैसे सर्च इंजन है जो इंटरनेट से जुड़े ऐसे असुरक्षित डिवाइस ढूंढ निकालते हैं, कोई भी, मतलब कोई भी इन कैमरों की लाइव फीड देख सकता है आपके घर के अंदर के, सिर्फ इसलिए कि कैमरा सस्ता था और पासवर्ड वही का वही रह गया।
ये तो डरावना है।
और बात सिर्फ प्राइवेसी की नहीं है, सोचिए कोई आपके घर के अंदर की कोई चीज देख लें, कोई किताब, कोई पेंटिंग या आपकी बातचीत सुन ले। वो इसका इस्तेमाल करके आपके बारे में कहानी बना सकता है, आपका भरोसा जीत सकता है और फिर आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, आर्थिक या कोई और।
तो कुल मिला के क्या समझे इससे? निचोड़ गया है। सीधी सी बात है कि हमारा डेटा बहुत बहुत कीमती है और इसका इस्तेमाल हमारी पसंद बदलने से लेकर देशों के बीच पावर बैलेंस बिगाड़ने और यहां तक कि सीधे हमलों तक भी हो सकता है। मतलब हमें बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है अब।
हाँ बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो अमित दुबे ने कही। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग शायद इसलिए सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि अभी तक कोई हमें एक्टिवली अपना दुश्मन नहीं मान रहा है, कोई हमें टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन तकनीक ने हमें बाय डिफॉल्ट असुरक्षित बना दिया है। तो सवाल यह है कि अपनी रोज की जो डिजिटल आदतें हैं उनमें हम ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं जिससे इस डिजिटल दुनिया में अपना रिस्क थोड़ा कम कर सकें।